اس پروگرام کے اخراجات جوائس مر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔
یہ جاننا نہایت اہم ہے کہ ہم حالت جنگ میں ہیں۔ آپ محسوس کر سکتے ہیں، آپ اپنی روح میں ایک جنگ محسوس کرتے ہیں۔ ایک فریق درست کام کرنا چاہتا ہے اور دوسرا فریق غلط کام کرنا چاہتا ہے۔ آپ کا ایک حصہ خود غرض ہے اور دوسرا حصہ لوگوں کو دینا چاہتا ہے، اور دشمن ہمارے جسم کے کمزور حصے پر حملہ کرتا ہے اور ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ وہ ہمیں روک سکے کہ ہم خدا کی مکمل وفاداری اور خدمت نہ کر سکیں۔ آج صبح میں نے اس تعلق سے بات کی تھی کہ وہ کس قدر جھوٹا ہے اور کس طرح ہم میں سے بہت سے لوگ اس کے جھوٹ پر یقین رکھتے ہیں۔ میں ایک سوال پوچھوں گی، کیا آپ میں سے کسی نے آج صبح ابلیس کو جھوٹ بولتے سنا جو آپ کو بتا رہا ہو؟ کیا آپ ٹھیک ہیں؟ مجھے امید ہے کہ آپ ایسا کرتے رہیں گے جب تک آپ مکمل آزاد نہ ہو جائیں۔ لیکن شیطان نے یسوع کو آزمایا جب وہ پاک روح کی رہنمائی میں بیابان میں گیا تھا، اور ابلیس نے اسے ایک کے بعد دوسرا جھوٹ بولا، اور ہر مرتبہ جب ابلیس نے یسوع سے کچھ کہا تو لکھا ہے کہ یسوع نے ابلیس کو جواب دیا اور خدا کے کلام سے حوالہ دیا، کیونکہ خدا کا کلام ہی ہم سب کے لیے بہترین ہتھیار ہے جو ہم دشمن کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں، بائبل میں لکھا ہے کہ جس کے پاس میرا کلام ہے وہ اسے وفاداری سے بیان کرے۔ اس لیے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا کے کلام کو کیسے بولیں، بجائے اس کے کہ لوگوں کے مسائل کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ ہمیں اس قدر کلام سیکھنا ہے کہ اس کا کب اطلاق کرنا ہے، کون سا حوالہ کن حالات میں بولنا ہے۔ جب ابلیس آپ سے کہے کہ آپ کے پاس کچھ نہیں، تو آپ کہیں کہ میں جس چیز پر ہاتھ رکھتی ہوں وہ بڑھتی اور کامیاب ہوتی ہے۔ جب وہ کہے کوئی آپ سے کبھی بھی پیار نہیں کرے گا، آپ کہہ سکتے ہیں خدا مجھ سے پیار کرتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے کہ مجھ سے پیار کریں۔ آپ لڑنا سیکھیں۔ سب سے زیادہ بڑا ہتھیار جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کا منہ ہے۔ اگر آپ کے منہ سے درست باتیں نکلتی ہیں، میں زور دوں گی، اگر آپ کے منہ سے درست الفاظ نکلتے ہیں، لیکن اگر غلط الفاظ نکلتے ہیں تو یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس لیے 42 یا 43 سال پہلے جب مجھے یہ اعزاز ملا کہ جب خدا نے مجھے چھوا، اگرچہ میں مسیحی تھی لیکن میری زندگی میں فتح نہیں تھی، اور مجھے پاک روح سے بھرنے کی ضرورت تھی، مجھے پاک روح میں بپتسمہ پانے کی ضرورت تھی، اور اس دور میں پاک روح بڑی کثرت سے مختلف فرقوں پر پوری دنیا میں نازل ہو رہا تھا۔ آپ میں سے کچھ کو یاد بھی ہوگا اور کچھ یہ نہیں جانتے، لیکن خدا خاص وقتوں میں زمین پر کام کرتا ہے، اور یہ ان میں سے ایک خاص وقت تھا۔ اب میں جلدی سے بتاؤں گی کہ آپ کو خدا کی کسی خاص وقت کے انتظار کی ضرورت نہیں کہ آپ کو چھوئے یا پاک روح سے بھر سکیں۔ ہر روز کہیں مجھے پاک روح سے بھر، اور مجھے پاک روح کی نعمتیں دے جو تو چاہتا ہے کہ مجھے ملے، تاکہ تیری خدمت قوت سے کر سکوں۔ ہمیں صرف فطری زندگی نہیں گزارنی، ہم بڑے پیمانے پر مافوق کل فطرت زندگی بھی گزار سکتے ہیں۔ ایک بڑی مافوق کل فطرت زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو میں اس دور میں یہ سب سیکھ رہی تھی کہ ابلیس میرا سب سے بڑا مسئلہ ہے، نہ کہ لوگ۔ ابلیس میرا سب سے بڑا مسئلہ تھا، اور وہ لوگوں کو استعمال کرتا ہے، لیکن اکثر ہم لوگوں کو الزام دیتے ہیں جبکہ ہمیں اس کا سامنا کرنا ہوتا ہے جو اس مسئلے کے پیچھے ہے۔ بائبل کہتی ہے شیطان یہودا میں سما گیا، اور اس نے صرف پیسے کے عوض یسوع کی مخبری کی، وہ بھی چاندی کے، صرف 30 سکوں کے بدلے۔ ایک اور جگہ لکھا ہے کہ شیطان ہننیا اور سفیرہ میں سمایا، اور ان دونوں کو فریب دیا کہ وہ بیچی ہوئی زمین کی قیمت سے کچھ اپنے لیے رکھ لیں۔ یسوع نے پترس کا سامنا کیا، پترس رسول کا۔ جب پترس نے کوشش کی کہ اسے یروشلیم جانے سے روکے اور دکھ نہ اٹھائے، یسوع نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، اے شیطان دور ہو، ये बात आपको कैसी लगती है? मैं ये नहीं कहूंगी कि अगली मर्तबा जब आपका अपने शौहर से झगड़ा हो तो उसकी तरफ देखकर कहें कि ऐ शैतान दूर हो। शायद ये बात हर एक को कहने के लिए मुनासिब ना हो, लेकिन आप दूसरे कमरे में जाकर ये कह सकते हैं। ये नहीं कि आपका शौहर इब्लीस है, लेकिन इब्लीस आपके जरिए काम कर सकता है, मेरे जरिए काम कर सकता है, यकीनन गैर ईमानदारों के जरिए कर सकता है, वो किसी के जरिए भी कर सकता है जो उसे किसी भी तरह मौका फराहम करते हैं। यकीनन आप समझ गए जो मैंने कहा। अब आप में से कुछ इब्लीस के जिक्र से परेशान लगते हैं कि हम उसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद करें कि कोई आपसे इस ताल्लुक से बात करे, यानी मुस्तकिल बुनियादों पर, क्योंकि अगर आप सिर्फ ये समझते हैं कि इब्लीस सिर्फ हॉलोवीन फेस्टिवल में सुर्ख लिबास पहने और दो शाखा लिए निकलता है और उसके सर पर दो सींग हैं और वो आपको जिंदा निगल जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा कि आपके साथ क्या हुआ। आमीन। इब्लीस मौजूद है और हमारी जमीन पर है, लेकिन खुशखबरी यह है, लूका 10:19, देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुछ लो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ और तुमको हर किस किसी चीज से जरर ना होगा। अब मैं नहीं चाहती कि आप भूल जाएं कि इब्लीस के पास कुव्वत है, लेकिन ये नहीं लिखा कि उसके पास इख्तियार है। देखो मैंने तुमको इख्तियार और कुव्वत दी है कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और गालिब आओ। गौर करें, उसके पास सिर्फ वही इख्तियार है जो हम उसे अपनी ला इल्मी के बाइस देते हैं या फिर अपनी सुस्ती के जरिए कि हम अपने इल्म को इस्तेमाल नहीं करते जो हमारे पास है। मसलन बाइबल में लिखा है कि सूरज के डूबने तक तुम्हारी खफगी ना रहे, और इब्लीस को अपनी जिंदगी में मौका ना दो। अब सुने, हम एक साल में कितनी मर्तबा उस शख्स से नाराज रहते हैं जिसके साथ हम हर रोज वक्त गुजारते हैं। सुने, हम सब ऐसा करते हैं और नाराजगी में दिन ढल जाता है, क्योंकि आप उससे हाथ नहीं मिलाएंगे और ना आप ऐसा करने देंगे। मैं ऐसा करती थी और सारी रात ठंड में लेटी रहती क्योंकि मैं उनसे कंबल मांगने की कोशिश भी नहीं करती थी, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनके पास पलंग का 90% होता और पूरी रजाई भी। ये बेवकूफी है। देखें, नाराजगी और गुस्सा आपसे अहमकाना हरकतें करवाता है। आमीन। इसलिए हमें कहर करने में धीमा होना है, हमें उससे अपनी जान छुड़ाने की जरूरत है जब ये हम पर हावी हो। इसलिए मुख्तलिफ चीजें हैं जिसके बाइस हम खुद दुश्मन के लिए दरवाजा खोल देते हैं कि वो हमारी जिंदगी पर इख्तियार रखे, लेकिन उसके पास कोई इख्तियार ना था जब तक कि आदम ने उसे ना दिया जो खुदा ने आदम को दिया था, मगर यसु ने उससे ये इख्तियार वापस ले लिया। आमीन। उसने उसका सर कुचल दिया और आलम अरवा और मौत का इख्तियार उससे ले लिया, और अब उसने ये इख्तियार हमें लौटा दिया है, लेकिन इस इख्तियार का उस वक्त तक फायदा नहीं अगर आप इसे इस्तेमाल ना करें। आपको इसकी जरूरत है। मैं बता सकती हूं कि आप कैसे हैं। मैं जानती हूं, तकरीबन 40 साल पहले मैंने ऐसी कोई बात नहीं सुनी थी। मैं कई साल चर्च जाती रही, कई साल गुजर गए। मैं जानती थी कि इब्लीस वजूद रखता है, लेकिन मुझे इस ताल्लुक से मालूमात नहीं थी। क्या हम ये समझते हैं कि क्लीसिया में इसके बारे में बात ना की जाए? लेकिन यही महफूज जगह है कि इस ताल्लुक से बात की जाए। मैं आपको बताऊंगी कि वो झूठा है। चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। खुदा का शुक्र हो कि वो आया है ताकि हम जिंदगी से लुत्फ उठा सकें और कसरत की जिंदगी पाए, यहां तक कि ये छलकने लगे। अब आप किसकी तरफ होंगे, किसकी हिमायत में खड़े होंगे, क्या आप अपना वक्त इंटरनेट पर ऐप जोई करके गुजारते हैं और जानते भी नहीं कि आप क्या बात कर रहे हैं? क्या आप सुबह बेदार होकर दुआ करेंगे और ऐसा रवैया रखेंगे कि आप मसीह में हैं और दुश्मन को सुबह ही बता दें, मुझे आपके बारे में नहीं मालूम कि आप क्या करते हैं, लेकिन मैं हर सुबह खुदा से कहती हूँ, ऐ बाप, दुश्मन ने आज मेरे खिलाफ जो भी मंसूबा बना रखा है, मैं यसू के नाम में उन तमाम मंसूबों को रद्द करती हूँ। यसू मेरी जिंदगी का मालिक है, इबलीस नहीं। यूं मैंने रूहानी जंग के ताल्लुक से बहुत कुछ सीखा, कुछ बातें समझ सकी और कुछ नहीं। मैं इबलीस पर चीखने से तंग आ चुकी थी और कोई तब्दीली नहीं आ रही थी। अगर लोग जो कह रहे हैं वो काम नहीं कर रहा, तो आप खुदा के पास जाएं, उससे पूछें कि वो ठीक कह रहे हैं या नहीं, क्योंकि खुदा का कलाम काम करता है अगर इस्तेमाल में लाया जाए। आमीन। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, तुझे झिड़कती हूँ उस वक्त तक जब तक थक ना जाती, और फिर भी मसाइल वैसे ही रहते। फिर मैंने खुदा से पूछा और कहा कि मसला क्या है। अक्सर ये खुदा से पूछने के लिए अच्छा सवाल है, लेकिन आप तैयार रहें क्योंकि वो आपको जवाब देगा। आमीन। फिर खुदावंद ने मुझे चैलेंज किया कि कलाम का मुताला करूं कि यसू ने रूहानी जंग कैसे लड़ी, इबलीस ने उसे परेशान नहीं किया, हालांकि यसू हर वक्त उसके पीछे पड़ा रहता, कभी उससे खौफजदा ना हुआ कभी अफसुर्दा नहीं हुआ इबलीस मुसलसल उसका ताकुक करता रहा, उस पर कोई असर नहीं था, क्योंकि यसू जानता था कि वो कौन है। दूसरा ये कि वो दाना था। जब बियाबान में उसकी आजमाइश हुई, फिर उसे कहा गया कि अगर तू खुदा का बेटा है, उन 40 दिनों में उसकी शनाख्त पर 2 मर्तबा हमला किया गया, और ये एक बड़ा हमला है जो इबलीस करने की कोशिश करता है कि हम महसूस करें कि हमारे पास कोई कुव्वत नहीं, कोई इख्तियार नहीं, खुदा हमसे प्यार नहीं करता, हमारी जिंदगी में कोई माफूकुल फितरत नाम की चीज नहीं है। अगर आप लड़ना और फाते होना चाहते हैं, तो आपको जानना होगा कि आप कौन हैं और आप किसके हैं और किससे ताल्लुक रखते हैं और आप मसीह में कौन हैं। सुने, उसके बगैर हम कुछ भी नहीं हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसके वसीला हम सब कुछ कर सकते हैं जो वो चाहता है कि हम करें। जो हम में है वो उससे बड़ा है जो इस दुनिया में है। अगर खुदा हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ है? अगर खुदा मेरी तरफ है तो मुझे किसकी हैबत? ये फहरिस्त शायद खत्म ना हो, लेकिन वक्त नहीं है। क्या आप सांस ले रहे हैं? क्या जिंदा हैं? इसलिए मैंने मुताला शुरू किया, क्योंकि मैंने यसू को इबलीस पर चीखते नहीं देखा। मैंने देखा कि उसने रूहानी जंग कैसे की, और आराम एक जंग है। मैं चर्च में सोने के ताल्लुक से बात नहीं कर रही, मैं अंदरूनी आराम की बात कर रही हूं। हर हाल में आपके अंदर दिली इत्मीनान, चाहे आपकी जिंदगी में कुछ भी चल रहा हो। यीशु जानता था कि वो कौन है। बाइबल कहती है कि रास्तबाजी का बख्तर लगाएं, सच्चाई का कमर बंद बांध ले। ये सब इफिसियों 6 बाब में है। यीशु सच्चाई जानता था, वो सच्चाई में चलता था, सच्चाई में रहता था। निजात का खौत पहन लो, ये एक मसीही की तरह सोचना है। आमीन। क्योंकि सुने, खुदा का कलाम 2-धारी तलवार है। शुक्रगुजारी जंग है। लोग आजकल ये सिखाते हैं, ये जंग है। हर मर्तबा जब आप खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं शिकायत करने की निस्बत, तो आप इबलीस के मुंह पर तमाचा मारते हैं। क्या आप सुन रहे हैं? हर मर्तबा जब आप खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, हर छोटी चीज जिसके बारे में आप सोच सकते हैं, शिकायत करने की निस्बत शुक्रगुजारी करते हैं जो आपके पास नहीं है, आप दुश्मन के साथ जंग कर रहे होते हैं। क्या आप जानते हैं कि आप में से कुछ लोग अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, अगर आप सिर्फ शिकायत करना बंद कर दें और जारहाना अंदाज में हर वक्त खुदावन की शुक्रगुजारी में बढ़ते रहें। मैं आपकी मदद कर रही हूं। आप सोचते, मैं शिकायत करना नहीं चाहती, मैं हर रोज शिकायत करती हूं। जिस्म शिकायत पसंद करता है। हम राहत और सुकून के आदी हैं। हम कुछ सख्ती बर्दाश्त करना नहीं चाहते। हमें गर्मी ना लगे, हमें सर्दी ना लगे, सख्त कुर्सी पर बैठना नहीं चाहते और गाड़ी को घर के दरवाजे से ज्यादा दूर खड़ा करना भी नहीं चाहते। जब मैं इबादत में आ रही थी तो मैंने कुछ खवातीन को दूर से आते हुए देखा, मतलब ये कि वो चली आ रही थी, ताकि सब सोचें कि ये कहां जा रही हैं। देखो उन खवातीन की तरफ जो इतनी दूर से मुख्तलिफ जगहों से चलकर आ रही हैं। ये कहां जा रही हैं? ये यीशु से मिलने जा रही हैं। एक चीज जो मैं आपको आज रात बताना चाहती हूँ कि यीशु हमेशा आराम में रहता। मैं चाहती हूँ कि आप भरोसा रखें जब मैं बताती हूँ कि अगर आप इत्मीनान में रहना सीख जाते हैं। जॉनी ने गीत में बताया कि जब आपने सब कुछ कर लिया जो आप कर सकते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? आप खड़े हो जाते हैं। लफ्ज खड़े होने का तर्जुमे का माखिज वही लफ्ज है जिसका मतलब है सुकूनत करना और जिसका मतलब यह है खुदा में आराम करना। जब आपने सब कुछ कर लिया जो कर सकते हैं तो कहते हैं खुदावन जो मैं नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, मैं तेरी मुंतजिर हूं। मैं आपको एक राज बताती हूँ, जब आप खुदा का इंतजार कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं, आगे बढ़े और जिंदगी से लुत्फ उठाएं। शायद आपको वैसे भी इंतजार करना पड़े तो फिर क्यों ना इस दौरान लुत्फ उठाया जाए जब आप मुंतजिर हैं। हम सोचते हैं चूंकि हमारे मसाइल हैं इसलिए हमें अफसरदा होना है। अच्छा सुने, अगर हम यीशु को एक लफ्ज में बयान करना चाहें, अगर मैं कहूं कि यीशु को एक लफ्ज में बयान करें तो हमें बहुत से मुख्तलिफ अल्फाज मिलेंगे। लेकिन मैंने एक शख्स को कहते सुना, मुझे ये बात पसंद है, उसने कहा मेरा ख्याल है कि यीशु को बयान करने का बेहतरीन तरीका यह है, यानी आराम। क्या आप सोच सकते हैं कि वो हर बात के लिए जल्दबाजी करे? लेकिन उसने कभी जल्दबाजी ना की, कभी परेशान ना हुआ, उसने बहुत काम किए लेकिन वो सब उसने आराम की हालत में किए। और जिस आराम की हम बात कर रहे हैं वो सबत का आराम है, वो आराम जिसकी खुदा पेशकश करता है, खुदा के आराम में दाखिल होना। अगर आप यूनानी में इस लफ्ज का मुताला करें तो इसके मायने काम से आराम करना नहीं है बल्कि काम के दौरान आराम की हालत है। क्या आप ये समझ गए? देखें, मैं कॉन्फ्रेंस के दौरान काम तो करती हूं और अभी भी एक काम ही कर रही हूं, लेकिन ये मेरे लिए मुश्किल नहीं है क्योंकि मैं हर चीज के लिए खुदा पर भरोसा रखती हूं कि मेरे मुंह से जो भी लफ्ज निकलेंगे और अगरचा मुझे पता भी नहीं कि ये क्या होंगे। और मेरे पास आप सब हैं जो यहाँ आए हैं, आपने पैसा लगाया, सफर किया, जहाज पर आई या गाड़ी में, मैं जिम्मेदार हूं और मैं महसूस करती हूं कि कम से कम जब आप यहां से जाएं तो आप ये कहें कि ये अच्छी कॉन्फ्रेंस थी। लेकिन मुझे इस बात की भी परवाह नहीं है क्योंकि मैंने वो सब किया है जो मैं कर सकती हूं, इसलिए अगर खुदा उसे अच्छा ना बनाए तो फिर ये अच्छा नहीं होगा। आमीन। और अगर आप आज रात मुकाशवा हासिल कर लेते हैं कि आप सिर्फ वही कर सकते हैं जो आप कर सकते हैं जब सब कर लेते हैं, जॉनी इफ़्सियों 6 बाप में से गा रहा था, जब हम सब काम कर लें तो मसाइल का तकाजा करते हैं कि आप अपनी जगह मजबूती से कायम रहें। जब आप वो कर लेते हैं जो आप कर सकते हैं तो ना बुड़बुड़ाएं, ना शिकायत करें, ना ही दूसरों पर गुस्सा निकालें जिनके आपकी तरह के मसाइल नहीं है। सिर्फ कहें, खुदावन मैं यकीन रखती हूँ कि तेरा कलाम सच्चा है, मैं तुझ पर भरोसा रखती हूँ, मैं खड़ी रहूंगी और तुझे अपनी जिंदगी में काम करता देखूंगी। क्रिस ने आज जैसे कहा कि हमें अपने ईमान को दोबारा तहरीक देने की जरूरत है, मैंने कहा कि हमें अपने ईमान को दोबारा तहरीक देने की जरूरत है। ईमान को हरकत में लाएं, मुतहरिक करें। पौलुस ने तीमोथियस को कहा कि वो ईमान को मुतहरिक करे, आग भड़काए, पहले तुम जोश और आग से भरे थे, ईमान से भरपूर, लेकिन अब तुम कमजोर हो गए हो। हम सब थक जाते हैं। आपके ख्याल में शायद मैं एक और कॉन्फ्रेंस के लिए। कभी नहीं थकती। मुझे आप सबसे बहुत प्यार है। मैं यहाँ हूँ क्योंकि मुझे आपसे प्यार है, मुझे खुदा से प्यार है। लेकिन लोग हमेशा मुझसे कहते हैं, क्या आप इस कॉन्फ्रेंस के लिए पुरजोश हैं? तो जवाब है नहीं। क्या जानते हैं कि अगर मैं सिर्फ जोश पर चल रही होती तो मेरी हिम्मत बहुत पहले जवाब दे चुकी होती। मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। नई चीजें पुरजोश होती हैं, लेकिन जब आप ये 2000 मर्तबा कर लें, गौर करें, क्योंकि जब जोश ठंडा पड़ जाता है तो असल मर्द और खवातीन वफादारी से आगे बढ़ते हैं। आज रात इस पर गौर करें। जब जोश ठंडा पड़ जाए तो आपको जानना होगा कि वफादार कैसे रहा जाए और बढ़ते जाएं। इसलिए नहीं कि जोश पैदा होता है, बल्कि इसलिए कि खुदा ने आपको मुकर्रर किया है कि ये काम करें और आप ये मोहब्बत में करते हैं, और फिर आप वाकई दुरुस्त इरादे से काम करते हैं। हम सब बेजार हो जाते हैं, बर्तन धोने सुख आ जाते हैं, एक और पैगाम सुनने से तंग आ जाते हैं। हम सभी बेजार बनकर शिकार हो जाते हैं। मैं ये दयानतदारी से कह रही हूँ, हम सब इंसान हैं। आप में से कितने हैं जो मामूल के काम करते रहने से तंग आ जाते हैं? सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, फिर सोमवार। सुने, क्या आप एक और पैगाम से उकता नहीं जाते एक और इतवार? लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि शायद आप अपने लीडर के बारे में सोचते हैं कि ये लोग हर वक्त आसमान के बादलों पर उड़ते हैं और सारा दिन हालेलुया का कोर्स गाते रहते हैं और सोचते हैं कि इब्लीस सिर्फ आपके पीछे पड़ा है। तो फिर उनका काम करके देखें। आप मुझे अजीब नजरों से देख रहे हैं कि इब्लीस के बारे में बात की जा रही है। मुझे शायद कोई अच्छी और मीठी और मजेदार बात करना चाहिए जिस पर सब लोग तालियां बजाएं, शोर करें, लेकिन मुझे बताना है कि इब्लीस आपसे नफरत करता है। बेहतर है कि आप अपने ईमान को हरकत में लाएं और हर वक्त दूसरों पर ही इनेसार ना करते रहें कि वो आपके लिए कुछ करें। जल्द या बदेर सभी अपने अपने जाति जूलियत का सामना करेंगे। यसु पाक रू की रहनुमाई में बियाबान में क्यों चला गया? ताकि इब्लीस से 40 दिन और 40 रात तक आजमाया जाए। लेकिन इसके बाद उसे फतह मिली, और उसे मनादी के काम से क्यों गुजरना पड़ा? क्योंकि उसे खुदा की जरूरत थी, और वो इब्लीस का मुकाबला कर सकता है और हर मर्तबा इब्लीस के खिलाफ खड़ा होकर उस पर गालिब आ सकता है।